प्रिय श्रोताओ नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पत्रस की पहली पत्री का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है दुखों के मध्य आशा। श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि इस बाइबल अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो चलिए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हो प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और सब परिवार फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला पत्रस की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की परमेश्वर के वचन की लालसा करो कि उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। और हमने यह भी देखा कि प्रभु यीशु नींव का पत्थर है और हम भी पत्थर हैं जिन्हें परमेश्वर उस नींव पर रखकर आत्मिक घर बनाता है और वो आत्मिक बलिदान चढ़ाने और प्रभु यीशु के माध्यम से परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने की बातों को देखते हैं, क्योंकि हमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। आज हम अपने अध्ययन में इससे आगे की बातों को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि प्रभु फिर से हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम दुर्बल और कमजोर हैं, हमारे जीवन में कुछ भी अच्छाइयाँ नहीं है। इसके बावजूद आप हमसे प्यार करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, प्रतिदिन का भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं और रहने के लिए स्थान देते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए और हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं। हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ दें, ताकि हम पहले पत्रस की पत्री के द्वारा से जो कुछ भी सीख रहे हैं अपने जीवन के लिए ग्रहण कर सकें। पिता परमेश्वर, आप हम सब की सहायता करें और अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। यह यशाया नबी की पुस्तक 28 अध्याय उसके 16 पद का संदर्भ है। कहता है, देखो मैंने सियोन में एक नींव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। यह पत्थर प्रभु यीशु का प्रतीक है। धर्मशास्त्र इस तथ्य को स्पष्ट व्यक्त करता है। हम आगे पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय के 7 पद में, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। कहता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है। जी हाँ, विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु बहुमूल्य है। मेरे विचार में पत्रस जैसे मछुआरे को बहुमूल्य शब्द काम में लेना बड़ी रोचक बात है। यह शब्द प्रायः स्त्रियों द्वारा काम में लिया जाता है, परंतु पत्रस जब भी प्रभु यीशु की या उसके लहू की चर्चा करता है तब वह इस शब्द को काम में लेता है और कहता है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पर पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए हैं। यह धर्मशास्त्र का एक अति महत्वपूर्ण पद है। यह भजन संहिता 118 उसके 22 पद का प्रश्न है। यरूशलेम में सुलेमान के मंदिर निर्माण के समय की एक घटना है। पहला राजाओं की पुस्तक 6 अध्याय उसके 7 पद में इस मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, और भवन के बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। मेरे प्रियो, पत्थरों को खदान में ही सही आकार दिया जाता था। भवन में उन्हें लगाते समय किसी प्रकार की ठोक पीट की आवाज सुनाई नहीं देती थी, वे अपने स्थान पर ठीक बैठ जाते थे। निर्माण के समय एक ऐसा पत्थर खदान से आया जो कहीं नहीं लग पा रहा था, अतः मिस्त्रियों ने उसे एक ओर कर दिया। अब जब सब पत्थर लगा दिए गए तब उन्होंने खदान में संदेश भेजा कि कोने का पत्थर चाहिए। वहां से उत्तर आया कि कोने का पत्थर तो बहुत पहले ही भेज दिया गया है। तब उन्हें ध्यान आया कि एक पत्थर उन्होंने पहाड़ पर से गिरा दिया था, अतः उन्होंने बड़े परिश्रम से उस पत्थर को उठवाया और निर्माण स्थल पर पहुंचाया। यही कोने का पत्थर था। जी हां, यह घटना सही है और हमारे इस पद की व्याख्या करती है। मेरे प्रियो, यह पत्थर प्रभु यीशु का प्रतीक है। वह अपनों ही के द्वारा त्यागा गया था, वह अपनों के बीच में आया परंतु अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वे ही नहीं, आज का सारा संसार भी प्रभु यीशु का त्याग करता है। हम बड़ा दिन तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं परंतु प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं। संसार में सबसे बड़ी निंदा की बात है जिसका जन्मदिन आप मनाएं उसी का तिरस्कार करें। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आज आपके लिए सफलता का पत्थर है या ठोकर का पत्थर, आपको निर्णय करना है। अब हम धर्मशास्त्र के एक अत्यधिक महान अंश पर आते हैं जिससे प्रकट होता है कि मसीही जीवन का आरंभ मसीह में हमारी स्थिति से आरंभ होता है। जब तक हम ऐसा जीवन न जिए हम सामान्य मसीही जीवन का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आइए हम पढ़ें पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9 पद। यहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याचकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। यहां पर वह हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहता है। हम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। विचित्र लोग नहीं हैं। परमेश्वर के लोग विचित्र या सिर फिरे लोग नहीं हैं। कुछ लोग यही सोचते हैं, अतः अधिक अर्थपूर्ण होगा परमेश्वर की निज प्रजा। आइए हम देखते हैं पहली बात, चुना हुआ वंश। पुराने नियम में परमेश्वर ने इसराइल को चुना था। धर्मशास्त्र में चुने हुओं के दो वर्ग हैं, इसराइल और कलीसिया। याद रखें कि पत्रस यहूदियों में से प्रभु को ग्रहण करने वालों को लिख रहा है। यद्यपि इस समय हम परमेश्वर के चुने हुए नहीं लग रहे हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण करके हम चुना हुआ वंश हैं, एक प्रजा हैं, जैसे इसराइल चुना गया था। मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य की कुंजी कलीसिया को दी गई है और हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है, क्योंकि हम चुने हुए साधन हैं। यह विश्वासियों का सम्मान है। परमेश्वर ने मानो हमें पट्टा दिया है जिस पर लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश हो। मेरे प्रियो, आज पृथ्वी की अनेक जातियों को 10 खोए हुए गोत्र बताने का निरर्थक प्रयास किया जा रहा है, और यदि वे अपनी इस कल्पना को सिद्ध कर भी ले तो क्या लाभ। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए इसराइल को एक ओर किया है, क्योंकि वह एक नया काम कर रहा है। वह हर एक जाति, भाषा और लोगों से एक चुना हुआ वंश तैयार कर रहा है। वे परमेश्वर के साथ कलीसिया में एक नए संबंध में हैं। जी हाँ, यद्यपि हम कहते हैं कि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, सच तो यह है कि उसने हमें चुना है। एक बार दो गरीब बच्चे एक बड़ी दुकान में गए और वहां अच्छी अच्छी वस्तुएं देखने लगे। वे तो उन्हें खरीद नहीं सकते थे, अतः उन्होंने एक खेल खेलना आरंभ किया। एक ने कहा, मुझे यह पसंद है। दूसरे ने कहा, मुझे यह पसंद है। लड़के ने कहा, मैं गेंद लूंगा। तब लड़की ने कहा, मैं गुड़िया लूंगी। मेरे प्रियो, हम भी इस संसार में गरीब लोग हैं, परंतु जब हम कहते हैं मैं यीशु को लूंगा, तब हमें बोध होता है कि उसने तो हमें पहले से ही चुन लिया है। यह कैसी महान बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 16 पद में प्रभु यीशु कहता है कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें चुना है। अब उत्तरदायित्व उसका है, क्योंकि उसने मुझे चुना है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। जी हां, उसने हमें चुना है, यह एक महान बात है। अब दूसरी बात हम देखते हैं, राजपदधारी याजकों का समाज। पुराने नियम में परमेश्वर ने संपूर्ण इसराइल को याजक चुना था और प्रभु राज में इसराइल की ही जाति याजक होगी। कहने का अर्थ है कि इसराइल ही याजक होगा। परंतु उनके पाप के कारण परमेश्वर ने एक गोत्र को याजक सेवा के लिए अलग किया था। आज केवल एक ही याजक है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है। आज प्रभु यीशु का प्रत्येक विश्वासी एक याजक है। आज कलीसिया याजकों का समाज है, जैसे इसराइल में लेवी याजक थे। मेरे मित्रों, हर एक विश्वासी याजक है, आप एक याजक हैं, और सबको परमेश्वर के निकट आने का हियाव है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के हैं। इस कारण हम महापवित्र स्थान में जा सकते हैं। पत्रस कहता है कि हम राजसी याजक हैं, अर्थात हम राजा के वंश के हैं। आगे चल करके हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर की आंखें धर्मी जन पर लगी रहती हैं और वह उनकी प्रार्थना सुनता है। यह भी कैसी महान बात है। अब हम तीसरी बात देखते हैं, पवित्र लोग। इसराइल का आचरण कभी पवित्र नहीं था, और कलीसिया के लिए भी यही कहा जा सकता है। इसराइल की चूक भयंकर थी और कलीसिया की चूक अति भयंकर है, परंतु प्रभु के साथ हम पवित्र हैं, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी धार्मिकता है। यदि आपको परमेश्वर के समक्ष स्थान प्राप्त है, तो वह आपकी योग्यता से नहीं, प्रभु यीशु के कारण है। मैं इससे महान बात दूसरी नहीं देखता कि मैं उसमें सिद्ध पाया जाता हूं। एक पवित्र लोगों का भाग होना कैसा सौभाग्य है, सौभाग्य की बात है, यह संसार में एक नई जाति है। तब हम चौथी बात देखते हैं, निज प्रजा, उसके अपने लोग। जी हाँ, हम परमेश्वर की निज संपत्ति हैं। मैं समझ नहीं पाता कि विश्वासी परमेश्वर की निज प्रजा होने के कारण क्यों डरते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा व्यवहार असामान्य हो, विचित्र हो। इसका अर्थ है कि हम प्रभु के जन हैं। जैसे एक युवक जब काम करके पैसा कमाता है तो वह उसका है, उसी प्रकार प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाकर मुक्ति का काम किया है और अब उसके पास अपनी प्रजा है। प्रभु यीशु अपनी महायाजकीय प्रार्थना में कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 6 पद में, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 37 पद में वह कहता है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। मेरे प्रियो, यह कैसी महान बात है कि पिता परमेश्वर ने हमें यीशु को दे दिया है। परमेश्वर अपनों को बुलाता है। जी हाँ, वह आपको भी बुलाता है। प्रभु यीशु आपको अपना बनाने के लिए बुलाता है। वह चाहता है कि आप चुने हुए वंश और राजसी याजक हों। वह आपको बागा पहनकर मंत्रोच्चारण करने के लिए नहीं, परमेश्वर के निकट आने के लिए याजक बनाने की पुकार करता है। वह आपको एक नई जाति बनाना चाहता है। वह आपको सब जातियों और भाषाओं से निकले विश्वासियों के समूह का अंग बनाना चाहता है। भजन संहिता 144 उसके 15 में लिखा हुआ है, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। भजन 79 के 13 में लिखा है, हम तो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़े हैं। यशाया 53 के 8 में परमेश्वर कहता है, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। और तब इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 12 पद में लिखा है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। ओह, मसीह में हमारा स्थान कैसा अद्भुत है। पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। कहता है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। जी हाँ, हम पहले परमेश्वर की प्रजा नहीं थे। हम सब पापी थे, हम उससे बहुत दूर थे। कहता है, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। मेरे मित्रों, यह एक वरदान है जिससे आप चूकना नहीं चाहेंगे। इस डब्बे पर दया लिखा है। यह बहुत बड़ा पार्सल है क्योंकि परमेश्वर दया का धनी है। यदि आपको आवश्यकता है तो आप प्रभु यीशु के पास आ सकते हैं। याद रखें कि पत्रस तीतर बीतर यहूदियों में से यीशु को ग्रहण करने वालों को यह पत्र लिख रहा है। उन्होंने पहले प्रभु यीशु को त्याग दिया था तो परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, परंतु अब वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर एक नया काम कर रहा है। वह मनुष्यों को बुला रहा है और अपनी दया प्रदान कर रहा है। क्या आप भी उसके पास आकर उस दया को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 11 पद में आगे कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। परमेश्वर की संतान को उसकी स्तुति करना है, परंतु कैसे? गीत गाकर? यह भी है, परंतु आप शरीर के कामों से दूर रहकर उसकी स्तुति कर सकते हैं। पत्रस हमें बता चुका है कि देह के काम बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा हैं। हम परमेश्वर के वचन से निर्मित अपना चरित्र प्रकट करके उसकी स्तुति प्रकट कर सकते हैं। पहला पत्रस 2:12 में आगे कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। पत्रस कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। देखिए, सच्चा मसीही अलगाव आपका दिखावे का पवित्र जीवन ना हो। सांसारिक बातों से दूर रहना भी अलगाव नहीं है। यह एक निश्चयात्मक व्यवहार है। यह ईमानदारी और भले कामों से प्रकट होता है। यह संसार में हमारी गवाही है। जी हाँ, इसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। पहला पत्रस 2:13-14 में लिखा हुआ है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के इसलिए कि वह सब पर प्रधान है, और हाकिमों के क्योंकि वे कुकर्मियों को दंड देने और सुकर्मियों की प्रशंसा के लिए उसके पास भेजे हुए हैं। ध्यान दीजिए, रोमी राजा डींग मारते थे कि वे न्याय करते हैं, परंतु वे अन्य किसी सरकार से भिन्न नहीं थे। गरीब को तो कहीं भी न्याय नहीं मिलता है और नहीं मिला है। धनवान तो वकीलों को खरीदकर न्याय का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाते हैं। न्यायपालिका के साथ केवल गरीब को ही समस्या होती है। अब विश्वासी क्या करे? क्या वह नियमों का पालन करे? यहां पर पत्रस यही कह रहा है, प्रभु के लिए मनुष्य के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। वे रोमी न्याय व्यवस्था के अधीन थे, उन्हें उसका पालन करना था। यद्यपि रोम की आशा थी कि उनका न्याय पक्षपात रहित हो, परंतु वह था नहीं। रोमी न्याय ही में प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और मसीह यीशु के अनुयायियों को सताया गया था, परंतु रोम अपने निष्पक्ष न्याय की डींग मारता था। हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। पहला पत्रस 2:15 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। जी हाँ, जब विश्वासी सरकार और अधिकारियों के अधीन रहते हैं, तब वह अपने जीवन से परमेश्वर की स्तुति प्रकट करते हैं। मैं चालान देना पसंद नहीं करता हूँ और विवाद करता हूँ, परंतु मैं चालान देकर नियमों के प्रति अधिक सावधान रहता हूँ। हमें नियमों का पालन करना है, क्योंकि हम गवाह हैं। आगे लिखा है पहला पत्रस 2:17 में, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। वह कहता है, सबका आदर करो। एक मसीही जन को मनुष्यों का आदर करना चाहिए। वह सबसे प्रेम करने की आज्ञा नहीं देता है। कहता है, भाइयों से प्रेम रखो, सबका आदर करो, और भाइयों से अर्थात अन्य विश्वासियों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो। हमें अपने जीवन से प्रकट करना है कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। कहता है, राजा का सम्मान करो, अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल आदि का सम्मान करो, चाहे वह अयोग्य हो, हमें उसका सम्मान करना है। तब हम देखते हैं कि आगे पत्रस कहता है, पहला पत्रस 2:18 में, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हों, पर उनके भी जो कुटिल हों। ध्यान दीजिए, वह कहता है कि सेवकों, अपने स्वामियों के अधीन रहो, चाहे वे दुष्ट ही क्यों ना हो। तब वह कहता है, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हों, जब तक कि वह आपसे गलत काम ना करवाए। कहता है, अधीन रहो। यहाँ चुनाव की स्वतंत्रता है, अधीन होना स्वैच्छिक है। इसलिए नहीं कि आपका नियोजक महान है, परंतु प्रभु ईश्वर के नाम के कारण। मेरे प्रियो, मालिक कर्मचारी संबंधों द्वारा भी परमेश्वर की स्तुति प्रकट होती है। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं और इन वचनों के प्रकाशन में रखते हुए हम उन लोगों का आदर करें जिन्हें परमेश्वर ने हमारे ऊपर ठहराया है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
एक ही खुदा की हो औला, दुनिया को ये दिखाओ तुम। दुश्मन